أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم پانچواں پارا شروع ہو رہا ہے اور یہ پارا جس لفظ سے شروع ہو رہا ہے پہلے وہ لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے پہلا پارا الحمدللہ سے شروع ہوا تھا شکر کا کلمہ ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی ہدایت دی اور اپنے تک پہنچنے کا ایک راستہ ہمیں اللہ نے دکھایا دوسرا پارا کس لفظ سے شروع ہوتا ہے آپ کو یاد ہے سیقول السفہا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتا ان قریب یہ بے وقوف کہیں گے ما ولاہم قبلتن کس نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے تحویل قبلہ کا سبجیکٹ تھا تیسرا پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے تلک الرسل پہلا پارا الحمدللہ شکر کا کلمہ دوسرا پارا جو ہے تو یہ معاف کیجئے گا دوسرا پارا سیقول السفہا تیسرا پارا تلک الرسل رسولوں کے بیان سے شروع ہوا ہے چوتھا پارا اب رسولوں کا بیان اللہ نے بہت سی باتیں کی رسولوں کے بارے میں چوتھا پارا جو ہے وہ ہے ہرگز نہیں تم نیکی کو پا سکتے ہو ہاں یہ یاد ہے نا آپ کو پانچواں پارا جس لفظ سے شروع ہو رہا ہے اور جو صورت ہے یہاں پہ والمحسنات یعنی یہ محسنہ سے لفظ نکلا ہے اور محسنہ کا لفظ جو ہے سین والا نہیں ہے یہ سواد والا محسنہ ہے اور ہا سوان سواد نون حسن حسن کا مطلب ہے ایک آپ سمجھیں چار دیواری یا پناہ یا ایک کورڈ چیز حسن کا مطلب حسن المسلمین کہتے ہیں نا استغفار کو کہ یہ مسلمان کی حفاظت کرنے والے اذکار ہیں تو محسنہ وہ عورت ہے جو ایک حفاظت کے حصار میں ہو جو ایک کور میں ہو جو معاشرے میں رسپیکٹ کی نظر سے دیکھی جاتی ہو اور اس کا لغوی مطلب ہے خاوند والی عورت یعنی ایک عورت جس کے پاس ایک بیوی ہونے کا سوشل سٹیٹس ہے وہ محسنہ ہے تو یہ بڑی پرحکمت لفظ ہے یہ اور عرب معاشرے میں محسنات جو تھیں یہ آزاد عورتیں ہوتی تھیں یعنی یہ لونڈیاں نہیں ہوتی تھیں یہ خریدی اور بیچی نہیں جا سکتی تھیں یہ لفظ عربی کا لفظ ہے یہ قرآن سے نہیں انٹروڈیوس ہو رہا وہ تو میں نے آپ کو بتایا خاوند والی عورتیں یہ عام مطلب ہے اس کا یعنی یہ قرآن کی اصطلاح میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو محسنات وہ عورتیں تھیں جو بیچی اور خریدی نہیں جا سکتی تھیں جو خاوندوں والی تھیں جن کے سوشل سٹیٹس تھے جن کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا جا سکتا تھا جن کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی تو اللہ فرماتا ہے کیونکہ پچھلا پارا آپ کو یاد ہے کہاں ختم ہوا ہے وہاں وہ عورتیں بتائی جا رہی تھیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے اسی لائن میں اب یہ عورتیں ہیں کہ دیکھو اور ہاں والمحسنات ان عورتوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پہلے سے خاون والی ہیں والمحسنات من النساء اور وہ آزاد عورتیں وہ خاون والی عورتیں عورتوں میں سے الا ما ملکت ایمانکم سوائے ان کے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں یہ دائیں ہاتھ کے مالک جو ہیں نا یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانا ہے کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو لونڈیاں ہیں لونڈی کیا ہوتی ہے لونڈیاں وہ عورتیں تھیں جو خریدی اور بیچی جاتی تھیں اور جو گھروں میں پھر مختلف خدمت کے کام سر انجام دیتی تھیں اور غیر اسلامی معاشرے میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے یہ عورتیں جو تھیں ان کو مرد اپنی حاجت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے ان کے ساتھ باقاعدہ تعلقات ہوتے تھے مردوں کے ان سے جو اولادیں ہوتی تھیں ان کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں تھا اور ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی تھی وہ مالک اگر چاہتا تو ان کو کچھ دے دیتا تھا اور ان کو رکھتا تھا اگر نہ چاہتا تو وہ ان بیٹیوں کو بھی بیچ دیتا تھا یعنی یہ ایک مویشیوں کی طرح یہ عورتیں ٹریٹ ہوتی تھیں جب اسلام آیا ہے تو یہ لونڈیاں بہت سے صحابہ کے پاس لونڈیاں تھیں ایسے صحابہ تھے جن کے گھر میں تین تین چار چار لونڈیاں تھیں ایسے صحابہ تھے جن کے لونڈیوں سے اولادیں تھیں تو ایک بہت بڑی حکمت اگر شروع سے لونڈی کو حرام کر دیا جاتا تو وہ عورتیں جو تھیں ان کی معاشرے میں پھر کوئی حیثیت نہیں تھی وہ عورتیں جو تھیں وہ پھر فحاشی کرنے پر مجبور ہو جاتیں وہ معاشرے میں دربدر ہو جاتیں तो शुरू से लौंडी को हराम नहीं किया गया, लेकिन इस बात की तरगीब दी गई कि गर्दनें आजाद करना, गुलामों को आजाद करना, लौंडियों को आजाद करना, लौंडियों से निकाह करना। अगर लौंडी इस्लाम ले आए, अगर वो ईमान ले आए, तो उसको आजाद करके उसे निकाह कर लेना। फिर फी जमाना लौंडी कौन है? फी जमाना तो लौंडियां मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ये हुक्म इसलिए मनसूख हुआ है कि लौंडियां वो औरतें होती थीं जब किसी जगह पर इस्लाम के लिए जहाद किया जाता था और जब फतह हासिल कर ली जाती थी, तो वहाँ की जो औरतें मुसलमान होने से इनकार करती थीं वो लौंडियाँ बन के माल गनीमत में आती थीं, और फिर उनकी तकसीम जो है वो माल गनीमत के साथ होती थी। बहुत सी ऐसी ख्वातीन हैं जो इस तरह आई हैं, जिनमें हमारी सैयदा उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत जुवेरिया हैं, जो एक यहूदी कबीले से उनका ताल्लुक़ था, और जब वो फिर आई हैं तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया है, उनके कबीले से ताल्लुकात बने हैं। सफ़िया बिनते हुवाई जो भी उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हैं, वो भी इसी तरह आई थी। तो जब फतह हो जाती थी और वो औरतें माल गनीमत के साथ आती थीं, तो फिर भी तरगीब ये दी जाती थी कि इनको मुसलमान करके इनसे निकाह कर लो, बजाय इसके कि इनको लौंडी बनाओ। लेकिन उस ज़माने में लौंडियों की डेफिनेशन ये थी। आजकल कहीं पे जहाद नहीं हो रहा, कहीं से माल गनीमत नहीं आ रहा, कहीं पे इस्लाम की सरबुलंदी की जंग नहीं लड़ी जा रही, ना ही कोई फतह हो रही है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तो ये लौंडियों के अहकाम जो हैं ये फ़ी ज़माना मनसूख हैं। इनके ऊपर बहस करना और ये कहना कि हमारे घरों में जो लड़कियां काम करती हैं और जिन बच्चों को हम तनख्वाहें दे रहे हैं, ये हमारी नौकरानियां हैं, ये हमारी लौंडियां हैं, और इनके साथ हम जो भी सलूक चाहें कर सकते हैं क्योंकि ये कुरान में है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये कुरान के मनाफी बात है, और ये जना बिल जबर है। ये एक औरत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके साथ जना का ताल्लुक़ जोड़ना है, जो गुनाह कबीरा है। ये बात उम्मीद है कि मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो कहा यह जा रहा है कि किन से निकाह नहीं करना चाहिए, और उसमें मोहसिनात आई हैं कि जिन औरतों के पहले से शौहर हैं। इल्ला मा मलकत अईमानुकुम, ये लौंडियां हैं, मैंने आपको समझा दिया। किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह का हुक्म है तुम्हारे लिए। व उहिल्ला लकुम, और हलाल की गई हैं तुम्हारे लिए। मा वराआ, जो इन सिवा हैं जालिकुम इनके। अंतबतहू, ये कि तुम चाहो, हलाल तुम्हारे लिए क्या किया गया है? अंतबतहू, ये कि तुम चाहो। बे अम्वालिकुम, अपने मालों से। मोहसिनीना, निकाह करने के लिए, कैद निकाह में लाने के लिए, हिसन में पनाह में लाने के लिए। गैर मुसाफिहीन, ना कि सफ़ाहा, एक बेवकूफ़ी करना, एक स्टूपिड काम करना, अपनी शहवत के लिए एक ख्वाहिश पूरी करना। तो तुम उन्हें निकाह में लाने के लिए उनको अपने माल दो, ना कि अपनी हवस की ज़रूरत को पूरी करने के लिए। तो यानी दीन इस्लाम में हवस रानी जो है और अपनी शहवत रानी औरतों के साथ बग़ैर निकाह के करना मना है, ये हराम है। फमस्तमता तुम, बस जो तुम इस मता हासिल करो, फ़ायदा हासिल करो, बिही मिनहुन्ना, उनसे, उन औरतों से। फ़ातूहुन्ना उजूरहुन्ना, तो उनके उनके उनको उनके मेहर दे दो। निकाह की कीमत जो है, मैंने आपको पिछले सबक में बताया है, सदाक जो है वो मेहर है, फरीदतन, जो मुकरर किया गया है निकाह में, जो मेहर मुकरर किया गया है वो बीवी को अदा कर दो। वला जुनाह अलैकुम, और नहीं तुम पर कोई गुनाह। फी मा तरादई तुम, उसमें जो तुम बाहम रजामंदी से, भी तुम बाहम रजामंदी से, मिम्बादिल फरीजा, उसके मुकरर करने के बाद। अगर तुम मेहर मुकरर करो और बाद में तुम एक और रकम पर रजामंद हो जाओ, जैसे मैंने कहा कि बीवी माफ़ कर दे, तो फिर भी इसमें कोई गुनाह नहीं है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, कान अलीमन हकीमा, वो जानने वाला और हिकमत वाला है। वमल्लम यस्तत्य, और जो इस्तेतात नहीं रखता, मिनकुम, तुम में से, तौलन, एक हैसियत, एक मकदूर, अय्यन के हल मोहसिनात, ये कि वो निकाह करे मोहसिनात से, मुआशरे की इज्जतदार औरतों से, अल मोमिनात, जो मोमिना भी हैं। फम मिम्मा मलकत अईमानुकुम, पस पस जो तुम्हारी लौंडियां हैं, मिन फतायातिकुम, तुम्हारी कनीजें, अल मोमिनात, जो मोमिन है। ये मैंने आपको बताया था ना कि लौंडियों से निकाह करने की तरगीब दी गई है ताकि उनको भी वो मुआशरती हैसियत हासिल हो जो आज़ाद औरतों को है, मोहसिनात को है, अगर वो मुसलमान हो जाए। वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे ईमान को। बाज़ुकुम मिन बाद, तुम में से बाज़ दूसरों के हम जिन्स हो, एक जैसे हो। फन की हु हुन्ना, पस तुम निकाह करो बे इज़्न अहले हिन्ना, उनके मालिकों की इजाज़त से। अगर एक मोमिना लौंडी से निकाह करना है तो उसके मालिक की इजाज़त से करना है। वह आतू हुन्ना उजूर हुन्ना, और उनको दे दो उनके मेहर बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। मोहसिनात, इनको भी निकाह में लाना है, गैर मुसाफिहात, ना कि अब ये औरतों के लिए है कि इज्जतदार औरतें मोहसिनात जो पनाह में आना चाहती हैं, गैर मुसाफिहात, ना कि मस्तियाँ करने वाली, हवसरानी करने वाली, अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने वाली। और अगला जो लफ्ज़ है वो बड़ा ख़तरनाक आ रहा है, अगले अल्फाज, वला मुत्तखिजात, और ना ही लेने वाली, आशनाइयाँ करने वाली, अखदान, चोरी छुपे। चोरी जो मुत्तखिजात अखदान जो हैं आजकल के ज़माने में, चूंकि इतना टाइम नहीं कि मैं पूरी हिस्ट्री आपको बताऊं, लेकिन चोरी छुपे यारियां करने वाली, इसका ये मतलब है। हमारे जो बड़े मुफस्सरीन जो बरेसगीर पाक व हिंद के गुजरे हैं, उन्होंने चोरी छुपे आशनाइयां करने वाली, चोरी छुपे यारियां करने वाली, इस मुत्तखिज़ात अखदान का मतलब ये बताया है। अखदान जो है छुप के एक दोस्ती करना, छुप चोरी छुपे एक काम करना और धोखा देना। फी ज़माना चोरी छुपे यारियाँ कौन करती हैं? सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चोरी छुपे की यारी कौन सी है? जो हम अपने सेलफोन पर, व्हाट्सएप पर, अपने मोबाइलों पर, अपने फेसबुक पर और मैसेंजर पर नामालूम अफराद के साथ कर रहे होते हैं। उन मर्दों को हम नहीं जानते रियल लाइफ में, लेकिन मोबाइल पर हम जो हैं उनके साथ गप्पें शप्पें और हंसी मजाक और उनके साथ जोक्स एक्सचेंज करना, ये सारी बातें हम कर रहे होते हैं। तो फी ज़माना सबसे आम मिसाल तो ये है। फिर अपने साथ काम करने वाले मर्द, जो जो हमारे कोलीग्स होते हैं, जो हमारे साथ एक पड़ोसी की हैसियत होती है, उनके साथ इस तरह के ताल्लुक़ रखना कि किसी को नहीं पता लेकिन हमारी एक सीक्रेट गपशप चल रही है अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अल्लाह माफ़ करे, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। अल्लाह को हमारी नीयतें अच्छी तरह पता हैं, और मामूली बात से भी बचना चाहिए जो बाद में जाकर पछतावे का बायस हो। फ़ाइज़ा अहसिन्ना, बस जब वो निकाह में आ जाए, फ़इन अतैना, बस फिर अगर वो करें बिफाहिशतिन, कोई बेहयाई, फ़अलैहिन्ना, तो उन पर जो बोझ होगा निस्फ़, आधा है, लौंडी की बात हो रही है, मा अलल मुहसिनात, जो आज़ाद औरतों पे है, मिनल अज़ाब, सज़ा का। अगर लौंडी से बदकारी हो जाती है तो उसको आज़ाद औरत से आधी सज़ा देनी है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर होती हैं। ज़ालिक लिमन खशिया, ये उसके लिए है जो डरा, अलअनता मिनकुम, तकलीफ़ में, ये यानी ये उसके लिए है जो तुम में से बदकारी की तकलीफ़ में पड़ने से डरे। जो निकाह कर सकता है आज़ाद मोमिना औरत से करे, आज़ाद मोमिना से नहीं कर सकता तो लौंडी, मोमिना लौंडी से करे। अगर उससे भी, यानी कि हर हाल में एक चोरी छुपे यारी करना और अफेयर चलाना जिसको हम कहते हैं, इस चीज़ से बचना है। और अगर यानी कि लौंडी के साथ किसी से जना का इर्तिकाब हो जाए तो लौंडी को भी सज़ा मिलेगी, लेकिन अल्लाह ये फरमा रहा है कि जो बदकारी की तकलीफ़ में पड़ने से डरता है तो बेहतर है कि निकाह कर ले। वह अन तस्बिरू खैरुल लकुम, और अगर तुम सब्र करो, इस तरह की गलतियां ना करो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तो बख्शने वाला, बार बार रहम करने वाला है। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, लियुबय्यिन लकुम, ताकि बयान करे तुम्हारे लिए, वयहदीकुम, और तुम्हें हिदायत दे, सुनन अल्लज़ीना, तरीक़े उन लोगों की, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, वयतूब अलैकुम, और तवज्जो करे तुम पर, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह तो जानने वाला और हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीदु, और अल्लाह चाहता है, अन यतूब अलैकुम, दोबारा वही बात है कि वो तवज्जो दे तुम पर, तुम्हारी तौबा कबूल करे, वयुरीदुल्लज़ीना, जबकि लोग क्या चाहते हैं, यत्तबिउन शहवात, कि वो पैरवी करते हैं अपनी शहवतों की, अपनी ख्वाहिशों की। अन तमीलू, ये कि तुम फिर जाओ, मैलन आज़ीमा, एक फिर जाना बहुत बड़ा, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए कुरान पढ़ने वालों, ए मोमिनों, लोग ये चाहते हैं कि तुम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करो। और ख्वाहिशात की पैरवी करने का मतलब क्या है? कि तुम राह हिदायत से बहुत दूर हो जाते हो। इस्लाम के अलावा भी जितने मजाहिब हैं जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि इंसान अपनी रूह से कैसे कनेक्ट हो सकता है, इस्लाम तो हमें सिखाता है कि अल्लाह से कैसे कनेक्ट होता है। लेकिन जैसे बुद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है और शिंटू है, ये मजाहिब आपको बताते हैं कि अपनी रूह से कैसे कनेक्ट होना है। और इन सब मजाहिब में ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना, इन तीन चीज़ों से मना किया जाता है। और ये तीन चीज़ें क्या हैं? ये हमारी शहवात हैं, ये हमारी बेहुदा ख्वाहिशात हैं। हद से ज़्यादा खा लेना, यहाँ तक कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, हद से ज़्यादा बोलना, यहाँ तक कि ऑल फॉल बोलने लगे, हद से ज़्यादा सोना क्योंकि सुस्ती में मुब्तला हो जाएं और ठीक काम करने से रह जाएं। इन तीनों चीज़ों को सख्ती से मना किया जाता है दुनिया के सारे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स में, क्योंकि ये शहवात है। यहूदियत जो है, हमारा जो जूडेज़म का जो मज़हब है, उसमें सख्ती से 7 गुनाह जो हैं, उसमें जना है, उसमें झूठ है, उसमें गुरूर है, 7 कार्डिनल सिंस जिसको कहते हैं, उनसे मना किया गया, और वो सब शहवात हैं। तो शहवात जो हैं ये इंसान को हिदायत के रास्ते से दूर करती हैं। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, अन युखफ़िफ़ अनकुम, ये कि वो हल्का कर दे तुमसे। वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, और पैदा किया गया है इंसान बड़ा कमज़ोर। तो कुरान पर अमल करने वाले को मालूम होना चाहिए कि मेरे खालिक ने ये इकरार किया है कुरान में, मेरे खालिक ने ये कहा है कि मैं कमज़ोर बनाया गया हूँ, और मैं गलती और कोताही बड़ी आसानी से करता हूँ, और मैं अपनी शहवत का और ख्वाहिश का गुलाम हूँ। तो मुझे हर हर लम्हे हिदायत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, और कुरान को मुझे इस तरह एक कनेक्शन मुझे कुरान से बनाना चाहिए कि जहाँ मेरे दिल में कोई गलत ख्याल आए तो कुरान जो है वो मुझे वार्निंग देने सामने मौजूद हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलू अमवालकुम, ना खाओ तुम्हारे माल, बैनकुम बिल बातिल, आपस में ना हक। ना हक एक दूसरे का माल खाना क्या है? किसी का हक मार लेना, किसी की मीरास मार लेना, किसी की ज़मीन कब्जा कर लेना, किसी के घर पे नाजायज़ कब्जा करना, किसी से चोरी कर लेना, किसी से रिश्वत मांगना, किसी के हक पर जहाँ से उसको तनख्वाह मिल सकती है सिफारिश पर किसी और को लगा देना। बहुत ज़्यादा तरीके हैं माल की करप्शन के, और हमारी तो पूरी कौम, हमारी तो पूरी नेशन इसका शिकार है। हमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में मना किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम, ना खाओ तुम्हारे माल, बैनकुम बिलबातिल, आपस में ना हक, इल्ला सिवाय अन तकूना तिजारतन, ये कि कोई तिजारत हो, अन तरादिम मिनकुम, आपस की रजामंदी से, वला तख्तुलू अनफुसकुम, और ना ही आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, काना बिकुम रहीमा, वो तो तुम पर बहुत रहम मेहरबान है, बार बार रहम करने वाला है। वमन यफअल ज़ालिक, यानि नाहक माल खाएगा या कत्ल करेगा, उद्वानन, सरकशी से, व जुल्मन, और जुल्म से, फसाउफा, पस अन करीब, नुस्लीहे, हम दाखिल करेंगे उसको, नो हम, सवाला या वासिल होना, दाखिल हो जाना है उसको, नारा, आग में। वकान जालिक, और ये चीज़ अल्लाह है, अल्लाह पर, यसीरा, बड़ी आसान है। ये ना समझें जो हम कहते हैं ना, अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है, वो अपने बंदे को कैसे जहन्नम में डालेगा। ये अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है कि ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। अगर तुमने खुद जहन्नम में दाखिल होने का इरादा कर लिया है तो अल्लाह तुम्हें उसमें, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की पनाह, अल्लाह तुम्हें उसमें दाखिल कर देगा, और ये उसके लिए बहुत आसान है। इन तजतनिबू कबाइरा, वही कुरान की आदत है कि जजर देने के बाद, डांट देने के बाद अल्लाह एक तसल्ली देता है। इन तजतनिबू कबाइरा, अगर तुम बचते रहो, इज्तनाब करते रहो गुनाह कबीरा से, मा तुन्हौना, जिससे तुम मना किए गए हो, अनहु, उससे, नुकफ़िर अनकुम, नुकफ़िर हम दूर कर देंगे अनकुम तुमसे सैयातिकुम तुम्हारे गुनाह तुम्हारी छोटी छोटी कोताहियाँ हम तुमसे दूर कर देंगे वनुदखिलकुम और हम तुम्हें दाखिल करेंगे मुदखलन करीमा एक इज्जत के दाखिल होने की जगह पर इज्जत के मकाम पर वला ततमन्नौ और ना आरजू करें मा फज़लल्लाहु जो बड़ाई दी है फजीलत दी है अल्लाह ने बिही बादकुम उसके ज़रिए बादकुम तुम में से बाज अला बाद दूसरों को। सहाबियात से भी रिवायात हैं कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती थी कि मर्द तो जहाद में लड़ते हुए शहीद होते हैं या रसूल अल्लाह हमारे लिए क्या है, या वो ये कहती थी कि दीन में सब कुछ मर्दों के लिए या रसूल अल्लाह बड़ी खुशखबरियाँ हैं मर्दों के लिए हमारे लिए क्या है। और जिस तरह आजकल वही आपकी आज़ादी या नस्वा की जो अलम बरदार हमारी बहनें हैं बच्चियाँ हैं जो ये कहती हैं कि दीन इस्लाम ने तो औरत को मर्द के आधा समझा है, हाँ गवाही भी आधी है और विरासत में भी हिस्सा आधा है, उनके लिए यहाँ पे अब सबक शुरू हो रहा है। तुम आरजू ना करो जो फजीलत अल्लाह ने दी है बाज़ों को बाज़ों पर लिर्रिजाली मर्दों के लिए नसीबुन एक हिस्सा है मिमक्तसबू जो उन्होंने कमाया, मर्द जो अमल करते हैं उनको सवाब है उनको हिस्सा है उसमें से वो मर्दों के अमल हैं। वलिन्निसाए नसीबुन और औरतों के लिए उसी तरह नसीब है मिमक्तसबना जो उन्होंने कमाया, मर्द पैसे लाता है औरत को मेंटेन करता है औरत की कफालत करता है उसके साथ हुस्न सलूक करता है उसको उसका सवाब मिल रहा है, औरत मर्द के इज्जत की हिफाजत करती है उसके नसब की हिफाजत करती है उसके घर की हिफाजत करती है उसके लिए बच्चे पैदा करती है बच्चों की परवरिश करती है उसके लिए उसमें हिस्सा है, ये अल्लाह की तकसीम है। वसअलुल्लाह और मांगो अल्लाह से मिन फजलिही उसके फजल से, क्यों अल्लाह को ये कहते हो या अल्लाह मुझे मर्द क्यों नहीं पैदा किया, क्या ये कैसी दुआ है, या अल्लाह मर्दों को क्यों ज़्यादा दिया है, अल्लाह से उसका फजल मांगो, अल्लाह अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह को मशवरा ना दें, अल्लाह से बहस ना करें, अल्लाह को कहें या अल्लाह मुझे भी दे दे मुझे रिस्क दे दे मुझे कुशादगी दे दे मुझे हुसन दे दे मुझे खुशी दे दे मुझे सुकून दे दे मुझे सवाब दे दे मुझे अपनी जन्नत में दाखिल कर, अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना बिकुल शैइन अलीमा वो हर चीज़ को खूब जानता है। वलिकुल जालना और हर एक के लिए हमने बनाए हैं मवालिया वारिस मिम्मा तरकल वालिदाने उसमें जो छोड़ मरें वालदैन वल अकरबून और कराबतदार वल लजीना और जो लोग अकदत ऐमानुकुम जिनसे तुम्हारा एक अहदो पैमान हो चुका है एक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट उनसे हो चुका है, जैसे किसी के लिए वसीयत लिखी हुई है या किसी के साथ कोई कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फ़ातूहुम पस दे दो उनको नसीबहुम उनका हिस्सा। इन अल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ल शैइन शहीदा हर चीज़ पर गवाह है हर चीज़ को जानता है हर चीज़ देख रहा है। अब जो आयत आ रही है जी इसको आयतुन निसा कहते हैं। इन एक और इंतहाई अहम आयत आपको लग रहा होगा ना जब से सूरह निसा शुरू हुई है हमने कितनी सारी अहम आयात पढ़ी हैं, ये इनकलाब लाने वाली आयात हैं जो मुआशरे में एक इनकलाब लाई थी क्योंकि मुआशरा औरतों और मर्दों से मिल के बनता है। ये जो आयत है आयत नंबर 34 इसको आयतुन निसा कहते हैं और ये औरतों और मर्दों दोनों के ताल्लुक को समझाने वाली बेहतरीन आयत है। और रिजालो मर्द कवामून हाकिम हैं निगरान हैं अलन निसाए औरतों पर। कवामून का लफ्ज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अर्रिजाल कवामून अलन निसा इतनी ही आयतुन निसा पढ़ी जाती है और फिर लोग इसके ऊपर बैठ के बहसें करते हैं और आज़ादी नुस्वा की तहरीकें चलाते हैं और औरतों की हक तलफी होने के शिकवे करते हैं। तो पहले तो आप कवाम का मतलब समझ लें, कौम से निकला है जिसका मतलब है खड़ा हुआ या स्टेबल। अर्रिजाल कवामून अलन निसा मर्द औरतों को स्टेबल करने वाले हैं मर्द औरतों को थामने वाले हैं मर्द औरतों को कंट्रोल करने वाले हैं मर्द औरतों के कफील हैं मर्द औरतों के निगरान हैं। इससे किसको इनकार है कि लड़की पैदा होती है तो बाप उसका जिम्मेदार है, भाई उसका जिम्मेदार है, शादी होती है तो शौहर जिम्मेदार है, बेवा होती है तो बेटा जिम्मेदार है उसका। यानी एक औरत को जिंदगी की हर स्टेज में मर्द का सहारा अवेलेबल होता है। हाँ, वो उसे अवेल करे या ना करे, अब ये तो उसकी मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुआशरे का डिज़ाइन ऐसा बनाया है कि औरत को एक कफील हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए और होता है। मर्द जो हैं, अब ये औरतों की कफालत की जिम्मेदारी अल्लाह ने किसको दी है? मर्दों को। क्यों? बिमा फज़ल अल्लाह, बसबब उस फजीलत के जो अल्लाह ने दी है, बादहुम अला बादिन, बाजों को बाजों पर। तो एक तो अल्लाह ने कोई फजीलत रखी है मर्द में जिसकी वजह से वो औरत का कफील है, वो उसका निगरान है। सबसे बड़ी फजीलत मर्दों को औरतों पर क्या है? फिज़िकल, उनकी जिस्मानी साख्त ऐसी है वो ज़्यादा सख्त मजदूरी कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा देर धूप में खड़े हो सकते हैं, उन्हें चक्कर नहीं आते आसानी से, वो बाहर जाके रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, वो औरतों के लिए लड़ सकते हैं। तो एक जिस्मानी फजीलत, उनकी मसल्स, उनकी हड्डियाँ, उनके उनके दिल, उनका सब कुछ ज़्यादा मजबूत है औरतों से। औरतों के जिस्म की साख्त ऐसी है क्योंकि औरत ने बच्चे की परवरिश करनी है, एक बच्चे को सींचना है, बच्चे को पैदा करना है, उसके जिस्म की सारी साख्त उसके लिए बनी हुई है। तो ये मर्द जो है, इसको जो जिस्मानी फजीलत इस औरत पे अल्लाह ने इसलिए नहीं दी है कि अल्लाह को मर्द ज़्यादा पसंद है, अल्लाह ने मर्द को औरत का सस्टेनर बनाया है, उसका कफील बनाया है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अल्लाह ने उसको एक जिस्मानी फजीलत दी है, उसको ज़्यादा स्टेबल दिमाग दिया है। मर्द कम जज्बाती होते हैं, औरतें ज़्यादा जज्बाती, जल्दी रोना आ जाता है, जल्दी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं, जल्दी वावेला करना शुरू करती हैं। मर्द ज़्यादा तहम्मुल वाले होते हैं, मर्द ज़्यादा वज़ादार होते हैं, ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले होते हैं। तो ये फजीलत अल्लाह ने दी है। और एक और फजीलत, वबिमा अनफकू, और बसबब उस खर्च के, मिन अमवालिहिम, अपने माल से। मर्द जो हैं वो खर्च करेंगे, वो मुकल्लफ हैं खर्च करने के लिए। अगर मर्द खर्च नहीं कर रहा और वो औरत को कह रहा है कि तुम जाकर बाहर से कमा कर लाओ, तो फिर वो उसने अपनी कवाम की जो उसका स्टेटस है, कवाम का जो मकाम है, वो उसने खुद ही ख़त्म कर दिया है। दो शर्तें हैं कवाम बनने की, जिस्मानी फजीलत, मर्द माजूर है, घर में पड़ा हुआ है तो वो फजीलत ख़त्म हो गई है, और माल खर्च करना। मर्द माल नहीं खर्च कर रहा तो फिर उसको अपनी कफालत और अपना कवाम होना और अपना हाकिम होना, इसके झाड़ने की कोई इजाज़त नहीं है। फिर वो कुरान से पता चल गया। फसवालिहात, पस नेकुकार औरतें, कानितात, जो ताबे फरमान हैं, फरमान बरदार हैं, हाफिजात, निगहबानी करने वाली हैं, लिलगैब, पीठ पीछे, बिमा हाफिज अल्लाह, उसकी जिसकी हिफाजत अल्लाह ने की है, अल्लाह की हिफाजत से। वो औरतें जो नेकुकार हैं, ताबेदार हैं, और अपनी इस्मत की और अपने घर की और शौहर के माल की हिफाजत करने वाली हैं, ये उनकी बात है। वल्लाती, और वो औरतें, तखाफूना, जिनसे तुम डरते हो, अब मर्दों को कहा जा रहा है, तुम खौफ करते हो, नुशूज़हुन्ना, उनकी बदखुई से, उनकी ज़िद से, उनकी बदमिजाजी से। ठीक है जी, कुरान में नापसंद किया गया है बदमिजाज औरतों को, बदमिजाज मर्दों को भी, बदअखलाकी, जिसमें खुल्क नहीं उसका दीन नहीं, ये हदीस है। तो जो उनकी बदखुई से अगर तुम डरते हो और बदतमीज़ हैं वो औरतें, फ़ाइज़ूहुन्ना, तो उन्हें वाज दो, उनको नसीहत करो। और वाज का मतलब है प्यार से रहनुमाई करना, मोहब्बत से समझाना। फ़ाइज़ूहुन्ना, अगर ना समझें, वहजुरूहुन्ना, तो और उन्हें तन्हा छोड़ दो, हिजर, हिजरान में छोड़ दो, फिल मदाजी, अपनी ख्वाबगाहों में। मियाँ बीवी का झगड़ा बेडरूम से बाहर नहीं आना चाहिए, हम में से सब ने ये सुना होगा। तो उन औरतों को तुम तन्हा छोड़ दो ख्वाबगाहों में, पहले तो उनको समझाओ, अगर वो नहीं समझती हैं तो फिर उनको ख्वाबगाहों में तन्हा छोड़ दो, यानी उनसे ताल्लुक कता कर लो, समझाने की कोशिश करो, नाराज़गी का इजहार करो। वद्रिबू हुन्ना, फिर भी नहीं समझती हैं तो उन्हें मारो। अब ये मारना जो है, ये इतनी बड़ी बहस है कि मैं इसमें नहीं जाऊँगी। लेकिन इसके तीन मतलब आप यहाँ पे जहन में रखें। वद्रिबू हुन्ना, एक तो है एक्चुअली किसी को मारना, तो हदीस में ये है कि औरत को उसके चेहरे पर या उसके यानी के सीने पर या चेस्ट पर ना मारो, और मारो भी इस तरह के उस पे उसके जिस्म पे कहीं दाग ना रह जाए, यानी कि ये सख्त मार से मना करना है। इसकी तफसीर में ये हदीस कोट होती है। उसके बाद ज़रब का मतलब मिसाल देना भी है, तो उस औरत को दूसरी औरतों की मिसालें देकर समझाओ, ये भी इसका तर्जुमा है और ये बिल्कुल सही तर्जुमा है अरबी कवायद के मुताबिक, कि उनको मिसाल दे के समझाओ, या फिर ये है कि उनको सुनाओ। ज़रब देना जो है वो किसी को ज़ोर से सुनाना भी है। तो ये तीनों मतलब जहन में रखें, इसका सिर्फ मतलब मारना पीटना नहीं है, इसके ये तीन मतलब हैं। फ़इन अतअनाकुम, बस अगर वो तुम्हारी अताअत करें, तुम्हारी बात मान जाएं, फ़ला तब हूँ, फिर नहीं ढूंढना अलैहिन्ना उन पर सबीला कोई भी रास्ता। फिर उन्हें ताने नहीं देने कि तुमने पहले मुझसे लड़ाई किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, फिर ऐसी कोई बात नहीं है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कान अलियन कबीरा, वो सबसे आला है और सबसे बुलंद है, सबसे बड़ा है। 1 मिनट 2 मिनट मैं और लूँगी, क्योंकि अगली आयत इसके साथ मिली हुई है। व इन खिफ तुम, और अगर तुम डरो, शिकाक बैन हिमा, शिकाक एक ऐसी ज़िद जो तोड़ पैदा करती है, शक अलग हो जाना, तो एक कश्मकश, अगर तुम डरते हो, कि सब मुसलमानों को कहा जा रहा है कि अगर मियाँ बीवी के आपस की ज़िद से तुम डरते हो, फब आसू, तो मुकरर करो हकमन एक मुनसिफ, मिन अहलिही मर्द के ख़ानदान से, वह हकमन और एक मुनसिफ एक फ़ैसला करने वाला, मिन अहलिहा उस औरत के ख़ानदान से, बेहतर है कि ये उनके माँ बाप बहन भाई ना हों। ये एक इंसाफ करने वाला न्यूट्रल ऑब्जर्वर मर्द के ख़ानदान से और औरत के ख़ानदान से मुकरर किया जाए। इन युरीदा इस्लाहन, अगर दोनों चाहेंगे सुलह करना, युवफ़िकिल्लाहु, तो मवाफ़कत पैदा करेगा अल्लाह, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान। अगर वो दोनों इस्लाह चाहते हैं, तो इन मुनसिफों के तवस्सुत से, इनके वास्ते से, इनके सबब से अल्लाह दोनों में इस्लाह कर देगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कान अलीमन खबीरा, वो सबसे ज़्यादा जानने वाला और सबसे ज़्यादा बहुत बाखबर है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पे अमल करने वाला और अमल करके आगे पहुंचाने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।